Dear learners, you might be happy to know that today we have with us Dr. Rima Bhatia. She is teaching in Delhi University from last 17 years and she has a vast experience of teaching sociology at the university level. Welcome, ma'am, to our program. In the last program, you get to know that what is sociology. As you know, sociology is a study of society, in which you get to know that there are different sociology studies, different social problems, family, marriage, and different social institutions, social organization like that. You also know that Auguste Comte is the father of sociology, but it is also important to know that why sociology has emerged and what motivated different thinkers to come with a subject like sociology. So today, Dr. Rima Bhatia will speak to you about the emergence of sociology.
Let me begin by first wishing the listeners a very happy new year. And today we will be talking about the emergence of sociology in the West. And if time permits, we will also look at the emergence of sociology in India. Now, as Sukant has just told you that sociology is the study of society, and I think you've done this in the last audio program. Now, if you look at how sociology has emerged, you will realize that sociology truly is the study of society, because you see, the emergence of sociology coincided with two most significant social and political revolutions of the recent times. And as far as these revolutions are concerned, you can actually talk about the French Revolution and the Industrial Revolution. Now, before I talk about the French Revolution and the Industrial Revolution, it's also very important to talk about the Age of Enlightenment. And the reason why we are looking at all of this is because, you see, sociology emerged as a response to what was happening in society. And when I say it emerged as a response to what was happening in society, that means the way of thinking, the way society was, the basic structure of society underwent such a massive transformation that people, or rather intellectuals of that time, were motivated to study society. Now, the Age of Enlightenment was such in which, for the first time, people actually started questioning long-standing ideas and beliefs of social life. And when I'm saying people started questioning the long-standing ideas and beliefs of social life, you must keep this in mind. This was something that was happening in the West. And what started happening was that at that point of time, in the Age of Enlightenment, this was also the emergence of science at that point of time. And with the emergence of science, jaise aap sab jante hain ki साइंस का मूल प्रिंसिपल जो रहता है वो है कि यू हैव टू थिंक रैशनली. हर चीज का प्रूफ होना चाहिए, ब्लाइंड बिलीफ नहीं है, एंड यू शुड बी एबल टू प्रूव एवरीथिंग. सो एंड देर आर लॉज विच गवर्न साइंस. कीपिंग दैट इन माइंड, सो दैट मीन्स वॉट यू आर सेइंग हियर इज दैट एनलाइटनमेंट इज एक्चुअली प्रोपोगेटिंग रैशनल आइडियाज. सो दैट मीन्स आप इस टाइम पे आप ये देखेंगे, एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द 15th सेंचुरी, दैट मीन्स 15वीं सदी के आसपास. आप देखिए क्या हुआ इस टाइम पे. एस्ट्रोनॉमर्स, आपने जरूर नाम सुना होगा, कॉपरनिकस, गैलीलियो और फिजिसिस्ट न्यूटन का जरूर नाम सुना होगा. इस टाइम पर क्या हुआ, इन सब की वजह से साइंस का प्रीडोमिनेंस आया. नाउ साइंस का प्रीडोमिनेंस आना मतलब आप अंधविश्वास खत्म हुआ. पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कैसे लाइटनिंग फॉर एग्जांपल कैसे होती है, या फिर बीमार कोई क्यों होता है, उन सब का रैशनल आंसर्स आने लगे. एक तो ये हुआ एज ऑफ एनलाइटनमेंट. दूसरा
मैम, अच्छा हो कि आप समझा रहे कि एज ऑफ एनलाइटनमेंट हैज अफेक्टेड द इमर्जेंस सोशियोलॉजी. मैम, कैन यू स्पीक अबाउट हाउ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैज आल्सो इट्स इंपैक्ट इन इमर्जेंस सोशियोलॉजी आल्सो?
एब्सोल्युटली सुगंध, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन this was 18th century, and Industrial Revolution was linked to the Age of Enlightenment, because here now what you have is the moment you're talking about, jaise maine pehle kaha, Enlightenment mein aap baat kar rahe hain the rise of science. Industrial Revolution, jaise ki aap sab jante honge, Industrial Revolution is linked with आप इस साइंस को मशीनों में कैसे लगाते हैं. सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आपके पास एक ऐसा युग आया जिसमें आप मशीन से प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं. नाउ अगर आप मशीन से प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं दैट मीन्स आप एक फैक्ट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं, और अगर आप एक फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं सो दैट मीन्स आप बात कर रहे हैं शहरीकरण की. दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट अर्बनाइजेशन, यू आर टॉकिंग अबाउट पीपल मूविंग फ्रॉम द रूरल एरियाज टू द अर्बन एरियाज. अब जैसे लोग माइग्रेट कर रहे हैं रूरल से अर्बन एरियाज में, आप देखेंगे कि अर्बन एरियाज में बहुत बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम्स आने लगी. बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम्स जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं तो बीमारियां भी बहुत फैली, और ऑब्वियसली सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस भी नई तरह के उनकी भी जरूरत आई. सो दैट मीन्स सोसाइटी को आप मतलब अगर आप विजुअलाइज करें तो एक तरफ तो आप साइंस के डोमिनेंस की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं प्रोडक्शन सिस्टम चेंज होने की, तीसरी तरफ आप ये भी बात कर रहे हैं कि मतलब नई तरह की प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रही हैं. सो इसकी वजह से पूरी सोसाइटी एक तरह से बहुत लार्ज स्केल पे उथल पुथल हो रहा था, जो पहले कभी भी नहीं हुआ इतने लार्ज स्केल पे, और इतने वाइड स्प्रेड रैमिफिकेशन इसके रहे. सो ऑब्वियसली देयर वाज दिस इम्पेटस टू स्टडी सोसाइटी. और साथ में आप जोड़ दीजिए फ्रेंच रेवोल्यूशन सुकांत. और अगर सुकांत बिल्कुल अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज फ्रेंच रेवोल्यूशन ने आपको एक नई तरह की सोसाइटी दी. आप जैसे कि डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आप लिबर्टी इक्वालिटी फ्रटर्निटी की बात करते हैं, ये सारे स्लोगन्स आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए. दैट मीन्स पहली बार आपने कोशिश करी कि इस तरह की सोसाइटी हो जो रैशनल हो, इस तरह की सोसाइटी हो जिसमें गवर्नेंस रैशनल हो. सो दैट मीन्स अब आप देखिए किस तरह का माहौल बन रहा है. एक माहौल इस तरह का बन रहा है जिसमें साइंस डोमिनेट कर रही है, जिसमें रैशनैलिटी डोमिनेट कर रही है, और ये साइंस और रैशनैलिटी केवल किताबों में सीमित होकर नहीं रही. ये साइंस और रैशनैलिटी आप देखिए ये फैलकर आपकी इकोनॉमिक स्फीयर में आ गई, आपके प्रोडक्शन स्फीयर में आ गई, आपके सोशल स्फीयर में आ गई, आपके कल्चरल स्फीयर में आ गई. सो दैट मीन्स सडनली यू हैव सडनली नॉट रियली सडनली बट फ्रॉम 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स टिल द 18th 19th सेंचुरी.
Yeah, that means you raised a good point. Then that means our learners might be able to connect it how it has attracted the attention of sociologists. So maybe I'll ask to you, ma'am, how it has impact on sociologists and how sociology has emerged.
Yeah, so Sukant, देखिए ना जैसे मैंने कहा 18th और 19th सेंचुरी में आप इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, आप सोशल रेवोल्यूशन की भी बात कर रहे हैं. सो दैट मीन्स देर इज केओस, देर इज डिसऑर्डर इन सोसाइटी. अब अगर सोसाइटी में केओस और डिसऑर्डर है, ये वो समय भी है जहां पर यू हैव इंटेलेक्चुअल्स हु आर वरिड अबाउट सोसाइटी, जो चाहते हैं कि हाँ हम इन सोसाइटी के इन नए प्रोसेसेस को पढ़ें, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें, एंड देन नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग दीज प्रोसेसेस बट अंडरस्टैंडिंग दीज प्रोसेसेस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लीडिंग टू अ बेटर सोसाइटी. सो दैट मीन्स अब आप बात कर रहे हैं एक ऐसे सोसाइटी की, एक ऐसे समाज की जिसमें आप डिस्कवर करें कि इस सोसाइटी को गवर्न करने के लिए क्या प्रिंसिपल्स हैं, किस तरह की रैशनैलिटी चाहिए हमें, हम इस सोसाइटी में सुधार कैसे ला सकते हैं, और इस सोसाइटी की बेटरमेंट कैसे हो सकती है. एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ एक और मूवमेंट जो चल रही थी उस वक्त वो ये भी थी कि आप किस तरह से मतलब आप ये जानकारी प्राप्त करें, आप इस तरह से मतलब आपको द इंटेलेक्चुअल्स आर ट्राइंग टू एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ इज इट दैट सोसाइटी इज होल्डिंग टुगेदर. मतलब वो क्या सूत्र है जो पूरी सोसाइटी को, पूरे समाज को बांधा हुआ है. ये थे मोटिवेटिंग फैक्टर्स फॉर स्टडिंग सोसाइटी. और इसको डिस्कवर करने के लिए ऑब्वियसली सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंस ऑफ साइंस, द डोमिनेंस ऑफ साइंस, सो यू हैव द इमर्जेंस ऑफ अ साइंस ऑफ सोसाइटी विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड लाइक सुकांत ने पहले मेंशन किया द फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट कॉम्ट. एंड इंटरेस्टिंगली ऑगस्ट कॉम्ट ने पहले जब इसका टर्म कॉइन किया फॉर द साइंस विच स्टडी सोसाइटी इट वॉज सोशल फिजिक्स. And why social physics? Because obviously, as मैंने पहले कहा, Copernicus, Galileo, Newton, इस तरह के physicists की domination थी. So obviously, you know, Comte भी पढ़ना चाह रहे थे society के बारे में. इसलिए उन्होंने social physics रखा. पर बाद में ये नाम जाकर sociology बना.
Yes. There are two terms like dynamics and also statics. The two terms he has used. Can you tell to our students what it means and what is the difference between dynamics and statics?
बिल्कुल. सुकान, जैसे मैंने कहा कि attempt था to study society in a scientific way. So keeping this in mind, Auguste Comte ने कहा कि the science of society should actually understand how is it that society has evolved. तो उन्होंने कहा society का evolution हुआ है जैसे कि religious, theological, metaphysical and scientific phase. Now जैसे सुकांत आपने पूछा कि social statics और social dynamics क्या है, according to Comte वो कहते हैं that when you study the social structure as it exists at a given point of time, that is what is known as social statics. And social dynamics is the changes that are taking place in society. So that means if you are looking at how is it that society has evolved from the theological, that is religious, to the metaphysical, that is falsely scientific, then you will obviously look at it from the point of view of social dynamics. That means what are the dynamic forces which are leading to this kind of a change. And finally you have the positive stage. Now jaise ki agar aap jante ho, English mein bhi positive ka matlab hota hai जिसमें आप यू नो पॉजिटिवली विश्वास रखें. नेगेटिव का ऑपोजिट पॉजिटिव. सो इसी तरह से पॉजिटिव स्टेज में सोशियोलॉजी का इमर्जेंस है. इस तरह से आप इनको पॉजिटिविस्ट कहते हैं बिकॉज यू नो यू आर नाउ लुकिंग एट अ साइंस विच इज लुकिंग एट सोसाइटी इन अ वेरी पॉजिटिव वे, फुल ऑफ होप, यू नो फुल ऑफ ट्राइंग टू डिस्कवर सोसाइटी एंड ट्राइंग टू डिस्कवर इट फ्रॉम अ बेटर पॉइंट ऑफ व्यू.
अच्छा, जैसे मैम बोल रहे हैं कि मतलब जैसे ऑगस्ट कॉम्ट कुछ सिमिलरिटी आ रहे विथ कार्ल मार्क्स, सो व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन द सोशल इवोल्यूशन थ्योरी दैट दे हैव गिवन? कैन यू नरेट दैट?
या एक्चुअली सुकांत, इससे पहले कि हम मार्क्स की और कॉम्ट की सिमिलरिटी की बात करें, बीच में हर्बर्ट स्पेंसर भी लाना बहुत जरूरी है. नो, हर्बर्ट स्पेंसर को लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस समय में, जैसे मैंने कहा कि कॉम्ट वॉज टॉकिंग अबाउट एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम the religious to the metaphysical to the positive stage. Yes. Similarly, you have Herbert Spencer, who is also talking about, you know, Herbert Spencer is talking about evolution of society. He is talking about how society is a living organism. जैसे कि हमारे body में सब parts एक साथ in tandem काम करते हैं to maintain us. Similarly, according to Spencer, what happens is that society में all parts of the society, जैसे सुकांत ने शुरू में आपको कहा कि society, you know, sociology studies different parts of society, जैसे कि institutions है, family है, government है, industry है, education है, ये सब different parts हो जाते हैं society के. और Herbert Spencer का focus था on seeing how is it that these different parts are functioning together. और Spencer ने suggest किया कि society अपने आप ही अपने अंदर जितने भी defects हैं उनको करेक्ट करती चली जाएगी. सो दैट मीन्स हर्बर्ट स्पेंसर इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द नेचुरल ऑर्डर ऑफ सोसाइटी. ही बिलीव दैट इन सोसाइटी देर इज नेवर एवर एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. नाउ एज अपोज टू दैट, जैसे सुकांत ने मुझसे पूछा कि कार्ल मार्क्स और ऑगस्ट कॉम्ट में क्या सिमिलैरिटी है, मेरे हिसाब से सिमिलैरिटी केवल इतनी है कि दोनों के दोनों एवोल्यूशनरी थे इन अ वे.
Yes, sir, I agree also.
है ना, मैं कह रही हूँ इन अ वे. वाई? बिकॉज मार्क्स और कॉम्ट में बहुत फर्क है. बहुत फर्क है बिकॉज यू नो कॉम्ट लिख रहे हैं उस टाइम पे वो पर्टिकुलरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्राइंग टू फॉर्म्युलेट अ साइंस ऑफ सोसाइटी. कार्ल मार्क्स का वो इरादा नहीं था. कार्ल मार्क्स को अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर भी आपने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा होगा. अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो वहां पर भी आपने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा होगा. हिस्टोरियंस भी कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ते हैं. अगर आप कम्युनिस्ट हैं तब भी आप कार्ल मार्क्स को पूछते हैं एक तरह से. सो दैट मीन्स कार्ल मार्क्स को सोशियोलॉजिस्ट हम कहते जरूर हैं पर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सोशियोलॉजिस्ट नहीं थे. इनफैक्ट इनमें से कोई भी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सोशियोलॉजिस्ट अभी तक नहीं थे बिकॉज दे वर जस्ट राइटिंग ऑन सोसाइटी. सो कार्ल मार्क्स की जो अगर थ्योरी है उसके बारे में हम अभी बात करते हैं.
Yes. Before we discuss about Karl Marx, maybe our learners will be interested to know what is about the Emile Durkheim and what is his contribution towards the emergence of sociology.
सुकांत दर्कहाइम पे जाने से पहले मेरे ख्याल से हम कार्ल मार्क्स की बात पूरी कर लें क्योंकि फिर हमारे लर्नर्स थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि हम पहले कॉम की बात कर रहे हैं फिर हम स्पेंसर की बात कर रहे हैं बीच में हमने दर्कहाइम भी घुसा दिया और कार्ल मार्क्स तो बीच में ही छोड़ दिया हमने तो अगर आप इन सबको एक साथ जोड़िए तो देखिए एक तरह से लेगेसी बनती है और ये लेगेसी हमारे लिए सुकांत ने बनाई है किस तरह से बनाई है उन्होंने एवोल्यूशन की बात करी है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव की बात करी है सो कॉम्स हैं जो एवोल्यूशनिस्ट हैं बिल्कुल ही शुरू शुरू में हर्बर्ट स्पेंसर हैं जो एवोल्यूशनिस्ट हैं बट वो सोसाइटी को एक ऑर्गेनिज्म की तरह देख रहे हैं ऑर्गेनिज्म की तरह जैसे कि चार्ल्स डार्विन देखते थे
yes,
अब चार्ल्स डार्विन अगर जिनकी जनरल नॉलेज स्ट्रांग है उनको जरूर पता होगा चार्ल्स डार्विन कौन है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज और खैर उस तरफ हम नहीं जाएंगे yes. फिर आप और कंफ्यूज हो जाएंगे तो हम वापस आते हैं सो यू हैव कॉम्ट यू हैव हर्बर्ट स्पेंसर एंड यू हैव कार्ल मार्क्स राइट अब इनका लीनियज तो बनाना थोड़ा सा मेरे दिमाग में थोड़ा सा मुश्किल है बट फिर भी क्योंकि हमने कार्ल मार्क्स की बात कर ही दी है तो हम उनके बारे में आगे बात करते हैं और डर्कहाइम को नहीं भूलेंगे वापस आते हैं डर्कहाइम पर पहले कार्ल मार्क्स थोड़ी बात
दैट इज इम्पोर्टेंट या
अच्छा कार्ल मार्क्स एक जर्मन पॉलिटिकल फिलोसोफर थे इकोनॉमिस्ट भी थे और जैसे मैंने कहा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रिस्पांस में सोशियोलॉजी इमर्ज तो कार्ल मार्क्स वाज वेरी वरीड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन सोसाइटी तो व्हेन आई एम सेइंग वेरी वरीड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन सोसाइटी दैट मीन्स उन्होंने देखा कि सोसाइटी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते सोसाइटी में दो वर्ग बन रहे हैं दो क्लासेस बन रही हैं एक तरफ आप बात कर रहे हैं बुर्जुआ की दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं प्रोलेटेरियट की ना बुर्जुआ तो वो हो गए जो कि प्रोडक्शन करते हैं और प्रोलेटेरियट वो हो गए जो वर्कर्स हैं तो ऑब्वियसली प्रोलेटेरियट और बुर्जुआ में बहुत ज्यादा फर्क था फर्क इस तरह से था कि जो प्रोडक्शन जो फैक्ट्री वगैरह के जो मालिक थे बहुत सिंपल सरल सी भाषा में मैं आपको समझा रही हूं ये बिल्कुल जरूरी नहीं है इसी तरह से आप देखें सो यू हैव कार्ल मार्क्स जो कि यू नो बुर्जुआ थे सॉरी जो कि बुर्जुआ और प्रोलेटेरियट की डिवीजन सोसाइटी में देख रहे थे ना जो बुर्जुआ थे वो हैं दोज हु ओन द मींस एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन दैट मींस फैक्ट्री मशीनें लैंड लेबर कैपिटल सब उनका है दूसरी तरफ है आपके पास प्रोलेटेरियट प्रोलेटेरियट केवल वही है जो मजदूर हैं तो मतलब अगर बहुत सरल भाषा में मैं कहूं सो यू हैव यू नो You have the bourgeois and the proletariat and the exploitation of the proletariat by the bourgeois. और ये दो classes हैं और इन दोनों classes में आपस में काफी conflict रहता था So देखिए पहली बार आपने conflict की बात करी है ना कॉम्प ने अभी तक conflict की बात करी ना हर्बर्ट स्पेंसर ने अभी तक conflict की बात करी पहली बार आप देख रहे हैं कि कार्ल मार्क्स हैं जिनका नजरिया सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा फर्क है वही टाइम पीरियड की स्टडी कर रहे हैं वो
या सो मैम मुझे फर्क वो क्या फर्क है बोल रहे हैं दोनों में क्या डिफरेंस है
सुकांत अभी तक हमने डर्कहाइम की बात नहीं करी है पर डर्कहाइम पर मैं अभी आती हूँ बट बिफोर आई हाईलाइट द डिफरेंसेस बिटवीन कार्ल मार्क्स एंड अदर थियोरिस्ट्स ये बहुत जरूरी है जानना कि जहां तक कॉम्ट और हर्बर्ट स्पेंसर का सवाल है यू कैन एक्चुअली यू नो टॉक अबाउट देम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ The pre-history of sociology, the early history of sociology. In fact, आजकल कॉम्ट और स्पेंसर के बारे में हम कम ही पढ़ते हैं बट क्योंकि हम सोशियोलॉजी की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं इसलिए इनके बारे में बात करना जरूरी था नाउ अब जैसे कि मैं कार्ल मार्क्स की बात कर रही थी नाउ और जैसे मैंने पहले कहा था आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि कार्ल मार्क्स स्पेसिफिकली सोशियोलॉजिस्ट नहीं थे ना ही कॉम्ट और ना ही हर्बर्ट स्पेंसर वो भी स्पेसिफिकली सोशियोलॉजिस्ट नहीं थे तो कार्ल मार्क्स तो एक्चुअली काफी रेवोल्यूशनरी थे और उनकी अगर आप राइटिंग्स जैसे मैं बात कर रही थी पहले कि कार्ल मार्क्स का जो व्यू पॉइंट था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में वो उन्होंने ये कहा था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज इनएविटेबल दैट मीन्स इससे तो कोई भी नेशन कोई भी सोसाइटी बच नहीं सकता That means all societies have to necessarily undergo industrial revolution, or not really industrial revolution, sorry, but you know capitalism, the capitalist mode of production. Now, capitalism or the capitalist mode of production for Karl Marx is nothing but factory-based production. So, ये हम कोई अलग बात नहीं कर रहे, सिर्फ मैंने एक नया term introduce किया है, capitalism या capitalist mode of production, जो कि industrial revolution में जिस तरह का production होता था, जिस तरह का उत्पादन हो रहा था, उससे ही related है. Now, for Karl Marx, in society, because of the capitalist mode of production, which was because of the industrial revolution, you clearly have two classes, the bourgeois and the proletariat. Now, bourgeois or proletariat mein, for Karl Marx, the relationship was one of exploitation. Herbert Spencer ne jo society ki baat kari, usme relationship tha between, you know, a very harmonious relationship between different parts of society. Matlab, according to Herbert Spencer, to conflict tha hi nahi society mein. Aap apne body ke different parts dekhiye, jaise ki aapki heart hai, lungs hai, kidney hai, ye sab aapas mein इन टैंडम वर्क करते हैं. मतलब ये नहीं, आपकी हार्ट ये नहीं कहती कि मैं दो मिनट का रेस्ट लेती हूँ, किडनी आप अपना काम करते जाइए, ऐसा तो होता नहीं है. दे ऑल वर्क टुगेदर. हर्बर्ट स्पेंसर का विजन ये था सोसाइटी के बारे में. कार्ल मार्क्स के हिसाब से सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन बहुत था, एक्सप्लॉयटेशन था बिटवीन द बुर्जुआ एंड द प्रोलेटेरियट. सो फॉर कार्ल मार्क्स, उनके हिसाब से ये एक्सप्लॉयटेशन इतने हद तक बढ़ जाएगी कि that then there will be a revolution. Now, us revolution ke chalte, because of that revolution, aur wo revolution violent revolution hoga, jisse ki then you will talk about the emergence of socialism and finally communism. So that means for Karl Marx, as far as the path of development which society followed, that path of development was very different from the path of development which Auguste Comte or Herbert Spencer spoke about. For Auguste Comte, like I had said, you know, you move from the religious to the metaphysical to the positive stage. For Karl Marx, the movement, the path was different. He said that you move from a primitive communism to the ancient mode of production, to the feudal mode of production, and finally the capitalist mode of production. Now, dekhiye, mode of production. So that means, for Karl Marx, the motivating factor for production, for change, was the mode of production. Now, mode of production, agar aap bahut simple tarah se main aapko samjhau, to mode of production is nothing but ki aap produce kaise karte hain. To agar aap primitive stage mein hain, to obviously aapka production hoga hunting and gathering. Ancient stage mein hain, to slavery hogi. Aur feudal mode of production mein agriculture hai aur chutput sa, you know, little bit of cottage industry hai, aur capitalist mode of production mein factory based production hai. Khair, ye to aapke course se directly related nahi hai, par kyunki Sukant ne is tarah se frame kiya, is tarah se question pucha, aur kyunki hum baat kar rahe hain ki sociology aaya kaise, kitab ki baat to aap sab padh hi lete hain, par ye sab agar aap janenge to you will better understand Karl Marx.
Yeah, so our learners might have got a good exposure to what is the Karl Marx vision of sociological emergence sociology. Now they might be interested to know the email, how Emil Durkheim has contributed in the emergence sociology. So ma'am, please.
Okay, jaise main keh rahi thi ki Karl Marx ka jo vision hai wo sociology ka vision nahi hai, wo society ka vision hai, but kyunki sociology society padhti hai, that is why, you know, isliye hum Karl Marx ko as one of the founding fathers of sociology mante hain. Now unse direct opposite थे इमाइल डर्कहाइम. अब अगर आप इमाइल डर्कहाइम की बात करें, ना इमाइल डर्कहाइम वॉज अ फ्रेंच इंटेलेक्चुअल. ना फ्रेंच इंटेलेक्चुअल थे जैसे कि ऑगस्ट कॉम थे, तो दैट मीन्स द लेगेसी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन फ्रांस इन अ वे एक्सटेंड्स फ्रॉम ऑगस्ट कॉम टू इमाइल डर्कहाइम. ना इमाइल डर्कहाइम very systematically, you know, he was very impressed with the development of science, and Emil Durkheim very systematically tried to develop the discipline of sociology. Now, when I say very systematically tried to develop the discipline of sociology, see, what does this mean? Iska matlab ye hua, dekhiye, Comte university man nahi the, wo intellectual the, wo philosopher the. Karl Marx revolutionary the, wo jis bhi desh mein rehte the, उनकी राइटिंग्स की वजह से उन्हें वहां से एक्सपेल कर दिया जाता था. इमाइल डर्कहाइम उनके डायरेक्ट ऑपोजिट तरह से एस्टैब्लिशमेंट मैन थे. एस्टैब्लिशमेंट मैन मतलब वो चाहते थे कि वो एक सब्जेक्ट एस्टैब्लिश करें यूनिवर्सिटी में जिसका नाम हो सोशियोलॉजी, और इसलिए उन्होंने बड़ी सिस्टमैटिकली सोशियोलॉजी को साइंटिफिक वे में डेवलप करना चाहा और उन्होंने किया भी और उन्होंने ये उन्होंने एक किताब भी लिखी 1895 में. उस किताब का नाम था द रूल्स ऑफ द सोशियोलॉजिकल मेथड. नाउ जैसे कि नाम आपको सजेस्ट करता है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, दैट मीन्स अगर आप सोशियोलॉजिस्ट हैं तो एक तो आप साइंटिफिक मेथड यूज करेंगे, दूसरा उस साइंटिफिक मेथड को यूज करने के लिए स्पेशल स्पेसिफिक रूल्स हैं. और अगर आप किताब देखेंगे तो उसमें 6 चैप्टर्स हैं और वो 6 चैप्टर्स 6 रूल्स हैं जिससे कि आप सोसाइटी को पढ़ेंगे. सो दैट मीन्स फॉर डर्कहाइम द टास्क ऑफ सोशियोलॉजी वॉज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स. सोशल फैक्ट्स मतलब कि जैसे कि व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर विच आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप. सो दैट मीन्स जैसे कि जिस तरह की आप रिलीजन फॉर एग्जाम्पल फॉलो करते हैं तो वो रिलीजन आपके लिए सोशल फैक्ट हो जाएगा. अगर आप क्रिश्चियन हैं तो क्रिश्चियनिटी एज अ रिलीजन बिकम्स अ सोशल फैक्ट फॉर यू. अगर आप अगर आपकी गवर्नमेंट किस तरह की है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस क्या है, डेमोक्रेटिक है कि नहीं है, वो अगेन सोशल फैक्ट हो जाएगा आपके लिए. किस तरह की मैरिज है आप की सोसाइटी में फॉलो करते हैं, जैसे सुकांत ने शुरू में कहा सोशियोलॉजी स्टडीज सोशल इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, मैरिज, इंडस्ट्री. सो ये सब सोशल फैक्ट्स हैं एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए. सो फॉर डर्कहाइम द टास्क ऑफ सोशियोलॉजी इज टू स्टडी सोशल फैक्ट्स. और अगर आप नोटिस कीजिए अभी तक हमने इतनी स्पेसिफिकली, इतनी कैटेगोरिकली किसी भी और थिंकर के बारे में बात नहीं करी है सुकांत.
That is a good, interesting, that means, because Immanuel Durkheim has contributed a lot and he has also given so many concepts like how systematic observation can be used to study the sociological events, facts and all that. So in that way, Immanuel Durkheim has contributed a lot in development of sociology. So Immanuel Durkheim is belong to French sociologist. So now we'll switch over to another European country like German. We'll talk about German sociologist Max Weber.
हाँ, but इससे पहले कि हम फ्रांस से जर्मनी तक उड़ान भरे, हम एक बारी फ्रांस में फिर से लैंड करते हैं. और फ्रांस में अगर आप डर्कहाइम के बारे में मैं बता रही थी आपको, और सुकांत आप बता सकते हैं कि डर्कहाइम की कौन सी सबसे मशहूर किताब थी जिसमें उन्होंने अपना
ली सुइसाइड इन व्हिच ही हैज गिवन ए लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड हाउ डिफरेंट मेथड्स कैन बी यूज्ड.
बिल्कुल ठीक कहा आपने सुकांत. सुइसाइड जो है वो किताब डर्कहाइम की है जिसमें उन्होंने स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स अप्लाई किया है. सो दैट मींस उन्होंने केवल हवा में बात नहीं करी, उन्होंने उसका एप्लीकेशन भी दिखाया. और इससे पहले कि हम जर्मनी तक उड़ते हुए पहुंचे, एक बारी फ्रांस की एक और बात डर्कहाइम की मैं कहना चाहूंगी. और ये कंट्रास्ट हो जाएगा विद कार्ल मार्क्स. कंट्रास्ट इस तरह से हो जाएगा, जैसे कि मैंने कहा फॉर कार्ल मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट बहुत था सोसाइटी में. यू नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द बुर्जुआ बाय द सॉरी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्रोलेटेरियट बाय द बुर्जुआ, दैट मीन्स बुर्जुआ प्रोलेटेरियट को एक्सप्लॉयट करते थे. उसके डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट में देखिए डर्कहाइम कार्ल मार्क्स के ईयर्स हैं 1818 टू 1883 और कार्ल मार्क्स के ईयर्स हैं 1818 टू 1883, डर्कहाइम के ईयर्स हैं 1858 टू 1917. सो दैट मीन्स कुछ ओवरलैप है दोनों में. और आप देखिए डर्कहाइम यू नो इन कॉन्ट्रास्ट वो बिलीव करते थे क्योंकि अब एनलाइटनमेंट का एज है, दिस इज एन एरा ऑफ एनलाइटनमेंट. सो दैट मीन्स डोमिनेंस ऑफ साइंस दैट मीन्स सोसाइटी में अब जो भी होगा अच्छा ही होगा. बिकॉज फॉर हिम वॉट हेल्ड सोसाइटी टूगेदर वॉज यू नो वॉज सोशल सॉलिडारिटी. तो डर्कहाइम के लिए सॉलिडारिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी. और सॉलिडारिटी का अगर आप इंग्लिश में मतलब देखिए तो सॉलिडारिटी का मतलब है बेसिकली यू नो पीपल आर टूगेदर, दे थिंक अलाइक. सो फॉर डर्कहाइम जिस तरह की कॉन्फ्लिक्ट के बारे में मार्क्स बात करते हैं, उस तरह का कॉन्फ्लिक्ट डर्कहाइम के लिए था, पर बहुत ही मतलब बहुत ही मिनिमल सा होता था. और अगर होगा भी तो वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा. सो यू सी कितना कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन डर्कहाइम एंड कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स इज अ रेवोल्यूशनरी, ही इज राइटिंग अबाउट एक्सप्लॉयटेशन इन सोसाइटी. डर्कहाइम ऑन द अदर हैंड इज वेरी मच अ यूनिवर्सिटी मैन. वो जैसे कि आप सब ओपन स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, डर्कहाइम भी एक जमाने में स्कूल में टीचर होते थे, फिर वो यूनिवर्सिटी में गए पढ़ाने के लिए. और उनके फादर एक प्रीस्ट थे. सो आप देखिए कितना कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन कार्ल मार्क्स और डर्कहाइम के बारे में. तो अगर अब सुकांत की इजाजत हो तो हम जर्मनी जाएं.
यस यस यस, मोस्ट वेलकम.
अच्छा, जर्मनी में देखिए, सुकांत को बहुत जल्दी है जर्मनी पहुंचने की. तो जर्मनी में यू हैव मैक्स वेबर. मैक्स वेबर की इयर्स हैं 1864 टू 1920. अब मैं इयर्स आपको इसलिए बता रही हूं ताकि आप मार्क्स वेबर और डर्कहाइम को आपस में उनका कंपैरिजन कर सकें आप. और अगर आप इनके बारे में पढ़ रहे हो तो आप एक कागज में बस तीन हेडिंग्स लिख लीजिए या तीन कागज रख लीजिए, उनके तीनों के इयर्स लिख लीजिए. और मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि देखिए तीनों के तीनों एक ही फिनोमिनन के बारे में लिख रहे हैं और बड़े ही अलग अलग ढंग से लिख रहे हैं. सो आप सुकांत एक बार डर्कहाइम और मार्क्स के बारे में थोड़ा समरी में बता सकते हैं हमारे लिसनर्स के लिए.
यस यस. So, Emile Durkheim is studying about the social phenomenon from there, but there are different perspectives. And maybe ma'am will make you more clear about the concept.
देखिए, Durkheim बड़ी systematically sociology को develop कर रहे हैं. Karl Marx का ऐसा कोई इरादा नहीं था. वो by chance जो society के बारे में लिख रहे हैं, sociologist ने उनको समझा कि चलिए ये तो हमारे मतलब की ही बातें हैं, तो उन्होंने सोशियोलॉजी में इनकॉर्पोरेट कर लिया अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ मैक्स वेबर वेरी मच लाइक कार्ल मार्क्स एंड अनलाइक डर्कहाइम वाज नॉट रियली अ सोशियोलॉजिस्ट. हम उसको बोल देते हैं सोशियोलॉजिस्ट हैं, बट ये एक्चुअली थिंकर्स थे सबके सब, और सबके सब सोशियोलॉजी के बारे में नहीं लिख रहे थे, सोसाइटी के बारे में लिख रहे थे, डर्कहाइम को छोड़कर, ये मत भूलिएगा. नाउ मैक्स वेबर इज ऑल्सो राइटिंग अबाउट चेंजेस इन सोसाइटी. और मैक्स वेबर जब सोसाइटी में चेंजेस के बारे में लिख रहे हैं, ये भी हिस्टोरिकली लिख रहे हैं. देखिए, कॉम्प्ट ने हिस्टोरिकली लिखा एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से, कार्ल मार्क्स ने हिस्टोरिकली लिखा एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव तो नहीं था, बट फिर भी हिस्टोरिकली उन्होंने बोला कि सोसाइटीज कैसे डेवलप होंगी. डर्कहाइम भी अपने डिविजन ऑफ लेबर में लिखते हैं हाउ सोसाइटीज विल डेवलप. नाउ मैक्स वेबर भी हिस्टोरिकली सोसाइटीज को स्टडी करते हैं, बट अनलाइक डर्कहाइम उन्होंने कहा दैट वी विल लुक एट वी विल लुक एट सोशल एक्शन, वी विल लुक एट हाउ इज इट दैट हाउ इज इट दैट सोसाइटी, ईच सोसाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो फॉर मैक्स वेबर, उनके जो मेथड के लिए जो टर्म यूज करते हैं वो एक जर्मन टर्म है, फेश्टेहन. इसकी आप स्पेलिंग अपनी किताब में जरूर देखिएगा. फेश्टेहन का मतलब होता है एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग. एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग मीनिंग यू पुट योरसेल्फ इन अनदर पर्सन्स शूज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव. दैट मीन्स अगर मैं आपके एक्शन समझना चाहती हूं तो मैं अपने आप को इमेजिन करूं कि अगर मैं ओपन स्कूल की स्टूडेंट हूं तो मैं क्या कर रही हूं और मैं कैसे इसके बारे में समझना चाहूंगी, तो वो मेरी आपके साथ एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी.
Yeah, so you might have got to know that how there are different thinkers, but they are not in institutions, but they are outside institutions, but they study sociology, they study society, and they have given their own perceptions, and they have given a methodological foundation to sociology. So now we'll be able to know that how sociology got institutionalized in European countries and.
ओके, जहां तक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी इन यूरोपियन कंट्रीज है, देखिए हमने हमने फ्रांस की तो ऑलरेडी बात कर ही ली, जहां पर हमने डर्कहाइम की बात करी. और अगर आप बाकी यूरोपियन कंट्रीज में देखें, सो व्हाट यू विल सी हियर इज इनफैक्ट यूरोप में बात करें तो हमने ऑलरेडी मैक्स वेबर की भी बात करी है. मैक्स वेबर कॉन्ट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इन जर्मनी. और एंड इफ यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट हाउ सोशियोलॉजी डेवलप्ड इन जर्मनी, यू ऑल्सो हैव जॉर्ज जिमेल. ये तो खैर आपकी किताब में नहीं है, बट क्योंकि सुकांत ने मुझसे पूछ लिया है यूरोप के बारे में, इसीलिए मैं बता देती हूं आपको. देखिए, यूरोप में जर्मनी में हिस्टोरिकल ट्रेंड ज्यादा पर्टिनेंट था. नाउ ज्यादा पर्टिनेंट इसलिए था क्योंकि वहां पर जिस मैंने कहा मैक्स वेबर हिस्टोरियन थे, तो हिस्टोरियंस का वहां पर बहुत ज्यादा दबाव था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होल्ड था. सो जर्मनी में जिस तरह से सोशियोलॉजी डेवलप हुई, वो ये सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए है, आपके कोर्स के बाहर की बात है, बट क्योंकि अब हमने बात शुरू कर दी तो मैं दो मिनट में ब्रीफली बता देती हूँ आपको. जर्मनी में जिस तरह से सोशियोलॉजी डेवलप हुई, एक तो थी हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी. हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी दैट मीन्स यू लुक्ड एट सोसाइटी फ्रॉम द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. और दूसरी थी सोशियोलॉजी जो कि हर्बर्ट स्पेंसर की तरह की सोशियोलॉजी थी, जिसमें यू लुक्ड एट सोसाइटी मोर फ्रॉम एन इम्पिरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मोर फ्रॉम अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक डर्कहाइम. यू नो, यू ट्राई टू डिस्कवर द लॉज ऑफ सोसाइटी, कि क्या लॉज हैं सोसाइटी के, क्या रूल्स हैं सोसाइटी के. सो ऑब्वियसली यू नो, दो सेपरेट तरह की सोशियोलॉजीज जर्मनी में डेवलप हो रही थी. फ्रांस में तो खैर डर्कहाइम का इम्पैक्ट था ही. अगर आप अपने कोर्स की किताब में वापस आएं तो आपको यूनाइटेड स्टेट्स आना पड़ेगा, और यूनाइटेड स्टेट्स में आप देखिए सोशियोलॉजी नाम का कोर्स वॉज टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1875 बाय समनर, विलियम ग्राहम समनर. And Sumner was greatly influenced by August Comte and Herbert Spencer, not by Durkheim, right?
Achha, ma'am, why it happened that he is more influenced by Comte and Herbert Spencer than Durkheim? Can you speak to our learners?
Sukant, iska jawab aap hi dijiye.
Yeah, maybe because Comte and Herbert Spencer are mainly American, so therefore... So therefore, that means maybe he was very interested to draw the influence of Comte and Herbert Spencer than Durkheim. So,
देखिए सुकांत, Comte अमेरिकन नहीं, फ्रेंच थे.
Yeah.
Herbert Spencer ना अमेरिकन थे ना फ्रेंच थे, वो एक इंग्लिश
थे. But they draw the influence.
हाँ बिल्कुल.
Yeah.
ये आपने ठीक कहा कि उनका इम्पैक्ट हुआ विलियम ग्राहम समनर पर, और ये इम्पैक्ट इस तरह से हुआ कि जिस तरह से कॉम्प्ट और हर्बर्ट स्पेंसर सोसाइटी की एवोल्यूशन पे फोकस कर रहे थे, समनर भी उसी तरह से सोसाइटी को पढ़ना चाहते थे. इसीलिए वो डर्कहाइम नहीं, कॉम्प्ट और हर्बर्ट स्पेंसर पे उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस था. और द फर्स्ट फुल फ्लेज्ड डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो इन 1892 by Albion Small. Now, University of Chicago इसलिए mention किया जाता है क्योंकि development of sociology in Chicago was very very prominent and it really influenced the development of sociology in later, you know, in later years. और Albion Small इसलिए भी important है because he also founded the American Journal of Sociology.
Yes.
So that means plus अगर आप अमेरिका में ही रहिए, अभी फ्रांस और जर्मनी नहीं जाएंगे हम, तो अमेरिका में ही यू ऑल्सो हैव जॉर्ज हर्बर्ट मीड एंड चार्ल्स कूली हु वर वेरी इन्फ्लुएंशियल इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी. और यू नो, जहां तक मीड और कूली का सवाल है, ये नहीं है कि अमेरिका में सोशियोलॉजी डेवलप हो रही है तो उसका कुछ रिलेशनशिप ही नहीं है जर्मनी के साथ या फ्रांस के साथ. जैसे मैंने पहले कहा, यू नो, कॉम्प्ट एंड स्पेंसर इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन यू नो, इन्फ्लुएंस्ड विलियम ग्राहम समनर. सिमिलरली जहां तक जब मैं मीड और कूली की बात करती हूं, यहां पर देवर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मेथड दैट वॉज यूज बाय मैक्स वेबर, क्योंकि मैक्स वेबर वॉज टॉकिंग अबाउट सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, ही वॉज टॉकिंग अबाउट लुकिंग एट सोशल एक्शन ऑफ मैन. इसी तरह से जो मीड और कूली हैं, देवर ऑल्सो लुकिंग एट इंटरक्शनिज्म, देवर लुकिंग एट सोशल एक्शन. और ये थोड़ा सा डिफरेंस यहां पर ये भी आ जाता है कि देखिए, अभी तक तो डर्कहाइम की आप बात करते हैं तो मैंने कहा वो ही वॉज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश सोशियोलॉजी एज अ वेरी क्लियर कट इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन. ये साइकोलॉजी है, ये सोशियोलॉजी है, ये हिस्ट्री है, उनका आपस में बड़ी क्लियर बाउंड्रीज हैं. अब अमेरिका में आप क्या देख रहे हैं, दिस वॉज लेटर. अमेरिका में आप देखते हैं कि यू नो, वेन यू टॉक अबाउट मीड एंड कूली, सोशियोलॉजी ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी है, तो उनके कंसर्न अब ये नहीं है कि हमने सोशियोलॉजी को यू नो अच्छे से एस्टैब्लिश करना है. सोशियोलॉजी इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, सो यू ऑल्सो सी द इम्पैक्ट ऑफ साइकोलॉजी हियर. सो कोलैबोरेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी इज नाउ बिगिनिंग टू इमर्ज इन अमेरिका. सो दैट मीन्स इफ आई वॉज टू यू नो, अगर सुकांत कहें तो अब हम थोड़ा सा समरी कर दें ऑफ हाउ सोशियोलॉजी डेवलप.
या दैट इज इम्पोर्टेंट.
अच्छा सुकांत, देखिए अगर आप अपने लिसनर्स के लिए हम बोलें तो अगर आप डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी देखना चाहें तो आप बैकग्राउंड देखिए, एनलाइटनमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट. उसका इम्पैक्ट देखिए ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन फ्रांस. यू हैव ऑगस्ट कॉम्प्ट, यू हैव डर्कहाइम. इन इंग्लैंड यू हैव हर्बर्ट स्पेंसर, बट इंग्लैंड में हमने और किसी के बारे में बात नहीं करी क्योंकि ये आपके कोर्स में नहीं है. And then you also have, you know, German sociology developing through Max Weber. And then you are talking about how it has developed in the United States of America. So you have very clear you know, very clear developments in terms of methodology. So France, you have Durkheim talking about studying social facts. Germany, you have Max Weber, who is talking about a more historical kind of sociology, who's talking more about social action, more about Verstehen. That means empathetic understanding. And in America, you have again, to begin with, impact of Comte and Spencer on American sociology. Later on, you also have the impact of Max Weber on sociology. Or, agar aap aajkal dekhe, to aajkal to khair, you're talking about interdisciplinarity, so sociology is borrowing from all subjects.
So, learners, you might have already gone through how sociology has emerged in USA, Germany, France, and all that. So now you may be too interested that why we are not being given exposure to how sociology has emerged in India. Now you will able to get to know how sociology has been developed in India now.
Sukant, agar aap India ki baat karein, so you see India is not very different from how it has developed in the West, because India was governed by the Britishers. So obviously the development of sociology in India was largely impacted or influenced by the development of sociology in the West, particularly in Britain. Now, you see, when the Britishers came to India for the first time, they had a very real need of understanding Indian society, because Indian society was very different from their own society. And if they have to understand Indian society, so then obviously, you know, they have to study Indian society. So the first studies of India were actually carried out by the British administrators and missionaries to understand society so that they could govern it better. And when I say, you know, govern it better, understand it better, why? Because Indian society was very different from their own society. You had the caste system, you had the joint family system, you had village communities, you had tribal communities, very different from their own. Now, don't forget the Industrial Revolution in Britain. Don't forget the French Revolution in the West. In India, nothing of that kind had happened so far. You know, there was no Industrial Revolution. You were not talking about about a democratic form of government. You were talking about India divided into many small kingdoms. So India was really not India. It was actually many principalities divided all over and very different from the British society. So you see, if you were to look at development in India, what you will see is development of sociology, in India. You have the initial phase, which is 1769 to 1900. Now, this was the time when you studied India for the first time. नहीं आए थे Britishers India में, उन्होंने कहा चलिए पढ़ते हैं और इन लोगों को हम थोड़ा सुधारने की कोशिश करते हैं, इनको अपनी तरह बनाने की कोशिश करते हैं. So, अब वो किस तरह से करेंगे? So, obviously, you know, they'll draw on various, you know, they'll draw on classical Sanskrit literature to understand the Indian way of life. So, for example, 1807 mein you have Francis Buchanan, who carried out a survey of the people in Bengal. Then you have Abe Dubois, a French missionary, who wrote a book called, dekhiye kitna aapka naam kitna interesting hai, Hindu Manners, Customs and Ceremonies in 1816. Then you have, you know, the first All India Census, which was conducted in 1871 with the help of, and then you you know, you also have people like Max Müller, who was a German scholar, who translated classical Indian texts into German. And so, ye the initial phase of development of sociology.
Yeah, but I want to speak a point. That means there also we have also Sanskrit literature. Whether it has an impact in sociological, emerging sociology or not.
Absolutely, you know, because jo 1769 to 1900 tak jo development of sociology in India thi, Sukant, wo sab classical Sanskrit literature se draw kiya unhone,
because,
to a large extent.
Yeah, because we have Arthashastra written by Kautilya, and there are basic text. Maybe Britishers have gone through that, and
bilkul. You know, tabhi to Abe Dubois ne kitab likhi, Hindu Manners, Customs and Ceremonies.
Yes, yes.
Ek to unhone classical Sanskrit literature se draw kiya. Dusra unhone kya kiya Britishers ne, unhone apne aap se study kiya. Jaise ki maine kaha first All India Census. Now, census kaise karenge aap? You will carry out ethnographic surveys, that means you will study societies, you will look at, you know, you will study how society exists, and then you will write on society. Aur ab hum Sukant 1900 ke aage chale?
Yeah, yeah. So in this context, it is important to know that how sociology has been professionalized and how it has been institutionalized. Because there are universities like Narada University, and there are a lot of universities, but at that time, Sociology has not been institutional, but it has been taught in different form. But we should know how sociology has been institutionalized in India. Okay, ma'am.
Okay, देखिए सुकांत, initial years में तो Britishers ने focus किया on customs, lifestyles and laws as far as people are concerned. And they did a number of work on caste, tribes, and you have a lot of scholars like, you know, Crook, Schering, Ibbotson and others. And most famous amongst them was Herbert Risley in 1916, who wrote a book called People of India, which, as the name suggests to you, was obviously on India, right? And this was also the time when professional sociologists and anthropologists like Rivers and Ratcliffe Brown started working in India. So 1906, you have W.H.R. Rivers, who wrote on pastoral communities of the Nilgiris. Now, W.H.R. Rivers is important because he was also the first head of the Department of Anthropology in Calcutta, in the Calcutta University. He was appointed. He could not join because he died in 1921. And his students were G.S. Ghurye. आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा. और उनके एक और बड़े मशहूर स्टूडेंट थे A.R. Ratcliffe Brown, जिन्होंने Andaman Islanders को पढ़ा था 1906 to 1908. और उनकी किताब थी Andaman Islanders, which was published in 1922. And जो फर्स्ट टू डेकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी हैं, उसमें यू ऑल्सो हैव यू नो नेम्स लाइक एल के अनंत कृष्णा अय्यर एंड एस सी रॉय, हु कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी. नाउ जहां तक अय्यर साहब का सवाल है, उन्होंने कास्ट और ट्राइब्स के बारे में लिखा और उन्होंने सीरियन क्रिश्चियंस ऑफ केरला के बारे में लिखा. एस सी रॉय ने ओरांस, मुंडाज एंड बिरहोर्स के बारे में लिखा. और अगर जैसे सुकांत ने कहा था कि हम यूनिवर्सिटीज के बारे में भी बात करें, तो फर्स्ट यूनिवर्सिटीज जो एस्टैब्लिश हुई, मतलब फर्स्ट यूनिवर्सिटी जहां पे सोशियोलॉजी एस्टैब्लिश हुआ, दैट वाज 1857. यू हैव बॉम्बे, कैलकटा एंड मद्रास, जहां पर फॉर्मली सोशियोलॉजी पढ़ाया जाने लगा. सो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में 1914, कैलकटा में 1917 और लखनऊ में 1921 में शुरू हुआ.
या So, ma'am, when you're speaking about it has been introduced in Bombay University, so our learners might be interested in who is the great person who has contributed in development of that department in Bombay University.
The great person जिसके बारे में सुकांत जानना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि मैं अपने listeners को भी बताऊं, जिन्होंने Bombay University में शुरू किया, वो थे Patrick Giddes, जो कि first chairperson थे Bombay University में. और फिर उनके स्टूडेंट्स थे, मेरे ख्याल से सुकांत का शायद इन्हीं की तरह विचारा था, जीएस घुरिये 1924 में, जो उनके स्टूडेंट थे, जिन्होंने गिरिस को सक्सीड किया. और उन्होंने तकरीबन 35 इयर्स तक बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया एंड उनके काफी मशहूर स्टूडेंट्स थे. सुकांत, आप घुरिये के बारे में ही बात करना चाह रहे थे. उनके काफी मशहूर स्टूडेंट्स रहे, जैसे कि एम एन श्रीनिवास, के एम कबाड़िया, आई पी देसाई, A.R. Desai and also M.S.A. Rao, who greatly influenced the development of sociology in India. And देखिए, एक जो बात ध्यान में रखनी चाहिए ये कि ये सारे के सारे सोशियोलॉजिस्ट वर ट्रेन्ड इन द वेस्ट एंड दे केम टू इंडिया.
बीके सरकार, आरके मुखर्जी एंड डीपी मुखर्जी हैज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड लॉट इन डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी ऑल्सो.
बिल्कुल. सो यू सी, लखनऊ में है, कलकत्ता में है, यू टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी. और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि अब धीरे धीरे करके सोशियोलॉजी जब एस्टैब्लिश होनी शुरू हुई इंडिया में, सो यू हैव द इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च एस्टैब्लिश इन 1969, जिन्होंने फर्दर सोशियोलॉजी को एक्सपैंड किया. और उसके पहले 1951 में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश्ड. एंड सी, देखिए, immediately after independence, as far as sociology in India was concerned, it was obviously linked to village studies and development programs in India. And you were looking at things like family. Srinivas dekh rahe the things like dominant caste, Sanskritization, Westernization. So basically, jaise ki Europe mein tha, you know, sociology, what you were looking at was a direct outcome of what was happening in society. Similarly, in India, what Indian sociologists were looking at was a direct outcome of what was happening in, in the Indian society in terms of development. So you're looking at village studies, tribal studies, you know, trying to understand Indian society. Aur jahan tak professionalization of Indian sociology ka sawal hai, I'm sure my listeners can look up their textbooks for various journals that were started, which contributed greatly to the development of sociology. So you have, journals like the Sociological Bulletin, you have Contributions to Indian Sociology, you also have Social Change, ye to directly sociology ke bare mein likhte hain, and then you also have other journals like Economic and Political Weekly.
So learners, when you are saying about village studies, so there are S.C. Dubey, who was written on Indian village, M.N. Srinivas, he has also written Indian villages in 1956, and Kathleen Goff studied the Tanjore village and described changes in the village also. So you might be interested to know that how sociology has also been introduced in NIOS also. So in NIOS it has been written in 2003, and like as there are so many anthropologists who has contributed in development sociology in NIOS, we have a chairman at that time, Dr. N.K. Ambast, Professor N.K. Ambast. He was particular about the studies of tribes, and he had also contributed a lot in writing many researches on tribal education also. So in 2003, we have introduced sociology, and we are so fortunate that we got you as a learners in sociology. So now I'll tell to our resource person to elaborate, to give a summary of all the discussions.
Okay, listeners, ye dekhiye ki humne kitna lamba safar tay kiya hai. Humne Europe mein 15th century se shuru kiya. और ये देखिए आज हम 2013 की बात कर रहे हैं. 15th सेंचुरी में जो सोसाइटी में उस वक्त हो रहा था, एनलाइटनमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, दैट इम्पैक्टेड द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया. हाउ सोशियोलॉजी डेवलप्ड, बिकॉज वी वर गवर्न बाय द ब्रिटिशर्स, सो इनिशियल स्टडीज वर ऑल ऑन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू नो द कास्ट सिस्टम, द ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, जो कि उनको चाहिए था अपने बेटर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के लिए. एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस यू हैव इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हु आर लुकिंग एट सोसाइटीज, society from the point of view of, you know, what will lead to the development of Indian society. Aur aaj kya sociology karti hai? Obviously, it will look at phenomena like the internet, globalization, gender studies. Jo aap akhbar utha ke, jo aap jin jin cheezon ke baare mein aap padhte hain aapki society mein jo ho raha hai, wahi sociologists karte hain. So, my dear listeners, I hope you have now understood how is it that sociology is actually truly the study of society. And it is truly the study of society, because sociology is not static at all. It is constantly changing, constantly evolving. So, agar aap apni society ke baare mein padhna chahte hain, caste system ke baare mein padhna chahte hain, status of women ke baare mein padhna chahte hain, law ke baare mein padhna chahte hain, to aap sab sociologists hain. And thank you very much, listeners. I hope you have understood the development of sociology.
Thank you, ma'am.